फिर उसके बाद फरमाया सल बनी इसराइल कमा तैनाहुम मिना यतिम बैयिना, बनी इसराइल से पूछो कैसी खुली खुली निशानियां हमने इनको दिखाई हैं, और फिर ये भी उन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम इसको बदबख्ती से बदलती है इसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है। इस पे 3 सेकंड रुकिएगा, मुहासबा करते हैं। पहले पूरे पारे में बार बार बनी इसराइल को नेमत याद दिलाई गई, आज अल्लाह ताला धमकी दे रहे हैं जब किसी को नेमत मिले और उस नेमत की कदर ना करे तो याद रखिए अल्लाह उसको सजा देता है। आज मुझे आपको इस्लाम की नेमत मिली, अल्लाह इसको कायम रखे, हिदायत की नेमत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की नेमत मिली तो अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम रखे। दुआ कीजिए रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, कि अल्लाह हमें कभी हिदायत के बाद गुमराह ना करना और हम अपने आप को हमेशा तेरी नज़रों से देखें कि तू हमसे क्या चाहता है। फिर इसके बाद फरमाया जिन लोगों ने कुफर की राय अख्तियार की है इनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी महबूब और दिल पसंद बना दी गई। जरा सा रुकिए, किनके लिए दुनिया महबूब होती है, किनको ये दिल पसंद लगती है जो कुफर की राह में होते हैं? थोड़ा सा गौर करें, क्या आज ईमान वालों को भी तो दुनिया खूबसूरत नहीं लगने लग गई? क्या उनकी भी जिंदगी ग्लैमर फन मौज मस्ती के अंदर तो नहीं घूम रही? और याद रखिए जब अल्लाह की नाफरमानियों के साथ दुनिया खूबसूरत लगती है तो दीन वाले इतने बुरे लगते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाए नहीं चूकते। कैसे नहीं चूकते? फरमाया ऐसे लोग ईमान की राह अख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं मगर क्यामत के रोज परहेजगार लोग ही इनके मुकाबले में आली मुकाम होंगे। रहा दुनिया का रिस्क तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क दे दे। दीन के लिए मजाक उड़वाना ये ईमान का एसिड टेस्ट है। जब सच्चा ईमान अंदर आएगा जरूर लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। याद रखिए पीछे बात है उदखलो फिर सिलमी काफा की, दिल सबका करता है, आते क्यों नहीं? क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर मैं मुल्लानी लगूंगी, फिर मैं दीन वाली लगूंगी, फिर मैं मॉडर्न नहीं रहूंगी, फिर लोग छूट जाएंगे, फिर मुझे दोस्ते दावत नहीं देंगी, फिर शादियों में क्या करूंगी, फिर वहां क्या करूंगी। 100 किस्म के सवाल दिल के अंदर उठते हैं और नुकसान क्या होता है कि इंसान फिर कहता है ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, ओके इरादा है नियत है, पिछले 10-15 साल से नियतें कर रहे हैं लेकिन चले कोई बात नहीं, अब एक और साल ऐसे ही जाने दो, हम आगे से आगे जाएंगे। आप और मैं खुद से पूछें क्या मैं दीन के लिए अपना मजाक उड़वा सकती हूँ? हम तो किसी की तेवरी नहीं देख सकते, हम तो माथे पे बल देख के परेशान होते हैं। उन्होंने जिस्म कटाए, उन्होंने अपने आप को पत्थरों पे लटवाया, जान कई लोगों की चली गई, तो क्या अगर मैं अल्लाह के लिए बात नहीं सुन सकती तो बाकी बातें तो फिर बात की बात है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें दीन पे अमल करते हुए इतना फख्र और इतना यकीन दे दें कि हम इस चीज़ को अपनी इज्जत अपनी ऑनर समझें कि हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए जानबूझ के ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे आपका और आपके दीन का मजाक हो, लेकिन अगर लोग आपके किसी इस्लामी हाल हुलिये का आपके किसी अमल का मजाक उड़ाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सिर्फ मजलिसों के अंदर दूसरे रंग में क्यों नहीं जाते, सब देखेंगे तो क्या होगा, देख लें नहीं फिर हम बुरे लगेंगे। महफिल में बैठे उठ के नमाज नहीं पढ़ते, सब देखेंगे तो क्या होगा, मुसलमानों की महफिल है, क्या आज आप देखिए कि लोग मुसलमानों की महफिलों में नमाज पढ़ते? मैंने ऐसी एक आधा फंक्शन अटेंड किया, ऐन मगरिब के अजान से 5-6 मिनट पहले खाना खोल दिया जो पिछले 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे। भाई नमाज मस्जिद कब क्या? हाँ नहीं ऊपर जगह बनाई हुई है, लोग पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे? पूरे शहर 500 के हॉल में से 4 लोग गए और उन्होंने ऊपर इतना सा कमरा जो बिल्कुल बिखरा हुआ था उधर जाके नमाज पढ़ी। ये मुसलमानों का हाल है। हम कहते लोग चुप करो ना घर जाके पढ़ लेंगे। आउज़ुबिल्लाह, जिस कौम ने नमाज पढ़ने को बेइज्जती समझना है उस कौम ने कल और दिन के लिए क्या करना है। याद रखिए अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह ताला मुझे आपको अपने रास्ते में संजीदा कर दे। याद रखिए पैसे का सदका बहुत आसान है, आप बड़े बड़े चेक दे सकते हैं अल्लाह के रास्ते में, इट्स नॉट अ बिग डील। इज्जत का सदका बहुत मुश्किल है, जब इस्लाम पे अमल करके हमारी इज्जत प्रेस्टीज हमारा हाल हुलिया हमारा गेटअप बदलता है ना, ये बहुत कम लोगों को अच्छे लगता है। तो अल्लाह भी कहता है कि मेरे कूचे में बिककर तो देख, कदर की हद ना कर दूं तो कहना। सब मुझसे खुश क्यों हैं पूछिए, कहीं मैं अल्लाह को नाराज करके सबको खुश तो नहीं कर रही। और सबको खुश कर दें, अल्लाह नाराज है तो कुछ नहीं राजी, जब रब राजी तो जग राजी। सब ने मुझे कबूल किया हुआ शायद इस वजह से कि मैं उनको खुश करती हूँ और अल्लाह को नाराज कर देती हूँ। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए आसानी कर दे। आज आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पार्शियल इबादत से अल्लाह हमें पीछे करता है। अल्लाह को 100% आपका मेरा वजूद चाहिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे 100% हमारे बच्चे हों, हमारा शौहर 100% हमारा शौहर हो, हमारी बीवी 100% हमारी बीवी हो। तो क्या अल्लाह को हक नहीं है? क्या बंदी तू पूरी मेरी बन जा, आधी फिर कोई कोना बाहर ही निकाल के तूने मेरी तरफ आना है? नहीं, उदखुलो फिस सिल्मी काफा और अन्ना को मिलेगी तो शरू। याद रखिए कल जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, ला तजूल कदम इब्ने आदम इंदी रब्बी, पूरे के पूरे रब के सामने होंगे, एक कोना हमारा इधर उधर नहीं होगा। और अल्लाह ताला को पार्शल इताअत तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें कॉन्फिडेंस दे दे। और जितना आपके अंदर एतमाद भरता जाएगा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह की तरफ से भी क्या लोगों की तरफ से भी पसंदीदगी आएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक मौके पर नबी सल्लम से ये बात पूछी थी कि अल्लाह के नबी मेरा दिल करता है सब लोग मुझसे खुश हों। देखिए ये कोई बुरी बात नहीं है, इंसान का हक है कि इज्जत मांगता है, प्यार चाहता है, मोहब्बत मांगता है, बच्चा भी चाहता है कि उसको सब अप्रिशिएट करें। तो कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल करता है सब लोग मुझे पसंद करें तो मैं क्या करूं? हम होते तो कहते ज़रा तोहफे दिया करो, ज़रा उनको खुश कर दिया करो, चलो जो कहते हैं मान जाया करो। अल्लाह के नबी का जवाब सुनिए, सही रिवायत है, आपने फरमाया लोगों से फिर बेनियाज हो जाओ, गिना गनी हो जाओ लोगों की नजरों, लोगों की बातों, लोगों की पसंद नापसंद से। और मैं कहती हूँ जिसने इस बुत को गिरा दिया कि लोग अच्छा कहते हैं इट्स ओके, लोग बुरा कहते हैं इट्स ओके, वो दुनिया में आया, उसके बाद आपका एक नया जन्म बनता है। मैं कई कुरान पढ़े हुए लोगों को देखती हूँ तो वो कहते हैं ये बात आपकी हमें उस वक्त तो समझ कोई नहीं थी आई, जब पहली दफ़ा सुनी थी अब समझ आ गई है कि असल आज़ादी अब मिली है। कहते हैं ना कि बंदगी में ही हुर्रियत है। हम जब लोगों को खुश करने के लिए जीते हैं ना उसी में अल्लाह को नाराज करते हैं। और लोग कभी खुश हुए? आज तक कभी लोग खुश हुए? 10 बातें माने खुश हैं, 11वीं ना माने आपसे नाराज हो जाएंगे। हर मौके पे उनको पूछे, सिर्फ एक मौके पे ना पूछे नाराज, हर मौके पे दीजिए एक मौके पे ना दीजिए तो नाराज। सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती है जो नाराज नहीं होती, आप अगर उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। दुआ कीजिए कि हमें इस बात का यकीन आ जाए। अब इंसानों की इब्तदा, शुरू में इंसान कैसे थे, इंसानियत कैसे शुरू हुई, उसका जिक्र है। कानन नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबीयीन मुबशिरीन व मुनज़िरीन। इब्तदा में तो सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी न रही और इख्तलाफात रूनमा हुए, तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास रवि पर बशारत देने वाले और कच रवि के नतज से डराने वाले थे, और इनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनमा हो गए थे इनका फैसला करे। और इन इख्तलाफात के रूनमा होने की वजह यह न थी कि इब्तदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तलाफ उन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। इसको हाईलाइट करें, याद रखिए लोग शुरू से तौहीद पर थे, एक अल्लाह को मानते थे। आज कुछ लोग ये शोशा छोड़ते हैं कि इस्लाम तो बड़ा नया दीन है, ये तो अभी सिर्फ 1400 साल पुराना दीन है और पहले तो फलान दीन थे। और लोग कहते नहीं इंसान पहले भटकता रहा, जंगलों में गया, फिर उसने उसको सजदा किया, उसको किया, बिल आखिर इस्लाम आया। तो ये गलत है, तरतीब उलट है। हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, अल्लाह को एक मानता है, लेकिन जब दुनिया में शिर्क हुआ फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। और आप देखिए आज जितने इख्तलाफ आते हैं वो अल्लाह ताला कहते हैं अनपढ़ लोगों के बीच में नहीं है बल्कि मिम बादी मा जातहुमुल बय्यिनात, हक का इल्म आने के बाद झगड़े होते हैं। दीनदारों के झगड़े दुनियादारों के झगड़ों से बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग अम्बिया पर ईमान ले आए इन्हें अल्लाह ने अपने इज़्ज़त से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। तो क्या मकसद है इसका, मतलब क्या है इस बात का कि हमेशा हक का साथ है। इस बात के ऊपर ना जाइए कि आपके साथ कौन किस तरह का मामला करता है और कैसे ये सारा कुछ होगा। याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने जिस चीज़ को आपके मेरे लिए रखा हुआ है वो क्या है कि आप और मैं अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ दें। आप देखेंगे हर पारे में आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है, हर पारे में आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है कि सबसे कट के रब से जुड़ जाओ। रहना दुनिया में है, लोगों के साथ जीना है, सिला रहमी लाजमी है, लेकिन दिल अल्लाह की तरफ, दिल अल्लाह की तरफ, अपने आप को अल्लाह से जोड़ दीजिए। आप देखिए एक ऐसी बेनियाजी आपके अंदर आएगी, अपनी जात को अगर अल्लाह ताला के साथ जोड़ते हैं आप महसूस करेंगे कि उसके बाद आप कहते हैं अब मैं जिंदा हूँ। मुझे कुछ साथियों की बातें इस वक्त भी याद आ रही हैं, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा एहसान जो हम पर अल्लाह ने इस कुरान को पढ़ने के बाद किया है वो क्या है कि हम लोगों की बातों से बेनियाज हो गए। तो अल्लाह ताला आपको मुझे भी बेनियाज कर दे और एक अल्लाह के साथ जोड़ दे। अब अगली आयत भी बहुत ही खूबसूरत आयत है, सवाल है एक अल्लाह का, जरा सा सुनते हैं फिर उस पे जवाब सोचेंगे क्या निकलता है दिल से। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, फिर क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखला तुम्हें मिल जाएगा? क्या जन्नत इतनी सस्ती है? क्या तुम कुछ किए बगैर जन्नत में जाना चाहते हो? अब इसको जरा सा बदलिए, क्या तुमने सोचा मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही दाखला मिल जाएगा? क्या तुमने सोचा कि ऐसे ही तुम्हें दुनिया की बादशाहत मिल जाएगी? क्या दुनिया में बगैर मेहनत किए कुछ मिलता? तो जन्नत इतनी सस्ती है, इतनी बेकार है, इतनी फालतू है कि बस आपने दुआ की अल्लाह जन्नत दे दे तो मिल गई। नहीं, जन्नत कहाँ से मिलती है? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाक ही अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो लिख लीजिए, जन्नत सिर्फ दुआओं पे नहीं मिलती, वरना कोई एक शख्स दुनिया में ऐसा ना हो जो जन्नत से बाहर जाए। क्यों? जो काम नहीं भी अच्छे करते ना वो भी दुआएं बड़ी करते हैं, करते नहीं है तो कराते जरूर हैं। आप दुआ करें अल्लाह में जन्नत में भेज दे। यानी ऐसे ही जैसे आप कहें कि आप दुआ करें कि हमें अमेरिका की नेशनलिटी मिल जाए। भाई आपने कोशिश की, फॉर्म फिल किया, तैयारी की, लाइबिलिटीज पूरी की, नहीं, आप बस दुआ कर दें, सिर्फ दुआओं से जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ, दुआओं से जन्नत की तरफ जाने की तौफीक मिल जाती है। यानी मैं साथ ही आपको कहूँ कि अब आप ये ना करें कि दुआ मांगनी छोड़ दें कि अल्लाह हमारे बच्चों को जन्नत दे, हमें दे, हमारे बहन भाई को दे दे, मांगिए। बट आपकी दुआएं लगेंगी कब? जब वो कोशिश करेंगे और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह वो कोशिश करने वालों में शामिल हो जाएंगे। फिर दूसरी बात है, ख्वाहिशों से भी जन्नत नहीं मिलती। आई वॉन्ट जन्ना, आई वॉन्ट टू गो टू पैराडाइज, कौन है जो ख्वाहिश नहीं रखता? ख्वाहिशों से जन्नत मिलेगी फिर सब जाएंगे। जन्नत किस चीज से मिलती है? मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यकूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहुम माहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाही करीब। हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका, इन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आई, हिला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथ ही अहले ईमान चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? इस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब है। तो जन्नत की कीमत आजमाइशें, मुखालफतें। मुसलमान मुखालफतों में कटता नहीं और जुड़ता है। याद रखिए, ये आजमाइशें इस्लाम को खोटे मुसलमानों से पाक करने के लिए भी आती हैं। दोनों तरफ से ड्यूल एक्शन है। जब मुश्किल आती है ना, तो जिन्होंने ऊपर ऊपर से इस्लाम का पर्दा चढ़ाया होता है वो सब छोड़ देते हैं, कहते छोड़ो छोड़ो, हालात बड़े खराब है, सब भूल जाओ, छोड़ दो, कोई नहीं है ना, अल्लाह को पता है मुसलमान है, अंदर से है ना, बाहर की कोई जरूरत तो नहीं है। अच्छा, दूसरी सूरत है, जब कोई ऐसी फितनों की आंधी चलती है ना, तो सच्चा मोमिन कहता है कर ले जिसने जो करना है, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, उसका ईमान और निखर के सामने आ जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है, खोट अलग हो जाता है और प्योर चीज़ अलग हो जाती है। इसलिए तकलीफ के बाद ही खैर मिलती है। आप देखिए, माँ दर्द सहती है ना, फिर बच्चा पैदा होता है। अल्लाह अगर आपसे अपने दीन का कोई काम लेना चाहता है ना, तो पहले आपको मुश्किलात की चक्की में डालेगा। पीछे पड़ चुके हैं, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. مصائب خمسہ ساتھ لگے ہوئے ہیں. جب کبھی اللہ کے نام پر کوئی آزمائش آئے مسکرا دیں, اب اس کے بعد اللہ نے کوئی مجھ سے بڑا کام لینا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر شر کے اندر سے خیر نکلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد اللہ کی قریب ہے, شرط یہ ہے کہ تم لینا تو چاہو. اس کے بعد خرچ کی کچھ باتیں. یسلونک ماذا ینفقون, لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر اور رشتہ داروں پر, یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو, اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. آپ دیکھیے یہاں یہ آیت آئی ہے, ایک بار آگے بھی آئے گی. صحابہ کرام بار بار آ کر یہ پوچھتے تھے ہم کیا خرچ کریں, یہ نہیں پوچھتے تھے کیا نہ خرچ کریں, کس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. نگوں اور ڈوریوں کا وزن تو کاٹ کے ہی زکوٰۃ ہوگی نا, یہ نہیں پوچھتے تھے. کیوں؟ یہاں آپ لکھیے اپنے لیے نقطہ. یہ سوال کون پوچھتا ہے کیا خرچ کروں, جس کو اللہ کو ملے ہی تو شرون کا یقین آتا ہے. آپ امیجینیشن میں لائیے کہ آپ اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر اب ایک بڑے گھر میں موو ہونے والے ہیں. آپ کی پوری کوشش کیا ہوگی کہ وہاں جانے سے پہلے ہی اچھی اچھی بڑی بڑی چیزیں وہاں بھیج دوں. کیوں؟ کہ جب وہاں جاؤں گی تو ایک تو سب چیزیں موجود ہوں گی, دوسری بات ہے کہ سیٹلڈ ہوں گی اور مجھے مشکل نہیں ہوگی. بالکل یاد رکھیے, وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کا احساس بندے کو اپنے مال کو اپنے سے پہلے اللہ کے راستوں میں لگانے کی دعوت دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو سوال کیا تھا ہم کیا خرچ کریں, جواب کیا ملا ہے, کیا خرچ کرو نہیں کہاں خرچ کرو. اور اس میں دیکھیے کتنی خوبصورت بانٹ ہے. اسلام بہت بیلنس طریقے سے مال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سکھاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کچھ جنگ کی باتیں ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا آیت بر کے ساتھ آپ کو, کہ کچھ احکامات دین کے بڑے خوبصورت لگتے ہیں. جیسے حدیث سنائی کہ شوہر کا بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی عبادت ہے. اب اس میں نفس کی بھی خوبی ہے اور جنت بھی مل رہی ہے, لیکن ہر حکم اچھا نہیں لگتا. اسی میں سے ایک حکم ہے جس کو جنگ کا حکم کہتے ہیں. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور تمہیں وہ ناگوار ہے. دیکھیے یہ آیت کتنا خوبصورت دفاع کرتی ہے مسلمانوں کا, صحابہ کا. آج ایک الزام ہے, نبی کے صحابی خون کے پیاسے تھے, جنگ و جدال کرتے تھے, اللہ کہہ رہا تمہیں تو ناگوار ہے. کیا پتہ چلا کہ اگر جنگیں کی تو اللہ کے حکم سے کی, جنگیں کی تو اس وقت کی جب دشمن سر پر آ گیا. تو صحابہ کو کوئی کریز نہیں تھی, کوئی کریونگ نہیں تھی ان کو لڑنے جھگڑنے کی. پھر ساتھ ہی زندگی کا ایک خوبصورت اصول, یہ آپ کی میری زندگی کا ایک بہترین اصول بن سکتا ہے اگر ہم اس پہ غور کریں. اور وہ کیا, وَسَان تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. دیکھیں زندگی میں بہت خوبصورت اصول ہے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کا. ایک آپ کے ساتھ معاملہ ہوا, مثلاً آپ کو اللہ نے چار بیٹیاں دیں, بیٹا نہیں دیا. اب آپ کا اگلی بیٹی پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا. اللہ کہتا ہے شاید تمہیں برا لگے لیکن یہی بیٹی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, یہی تمہاری آخرت کا ذریعہ بن جائے. چاکلیٹ بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن وہ ان کے دانت توڑ دیتا ہے. دودھ اچھا نہیں لگتا لیکن اچھا ہے. تو زندگی میں خوش رہنے کا راز کیا ہے کہ جب کوئی چیز ناگوار لگے تو سوچ لیں کہ اس میں کوئی خیر ہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر اپنی بیوی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس کی وہ عادت یاد کر لے جو اس میں اچھی ہے. یعنی پازیٹیوٹی سکھائی, نیگیٹیوٹی سے بچنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو سوچ لیا کرو اس وقت جب تمہیں کوئی بری لگے. جھگڑا ہونے کی نوبت آ گئی, آپ کو گھر والوں کی شوہر کی کوئی بات اچھی نہیں لگی, فوراً اس وقت ان کی کوئی اچھی عادت سوچ لیں, چلیں اچھی بھی تو ہے نا, چلیں کوئی بات نہیں. اگر آج غصے میں تو اکثر اچھے موڈ میں بھی تو ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں گے کیسا بندہ ہر قسم کے حالات میں راضی ہوتا ہے. اب ٹیکس کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں, خود سے پوچھتے ہیں مجھے دین کا کون سا حکم ابھی تک مشکل لگ رہا ہے, مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ 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 چیزیں نہیں اچھی لگتی. میں بڑی اچھی مسلمان ہوتی اگر دین میں یہ کچھ نہ ہوتا, وہ کیا ہے اس کو لکھیں. اکیلے میں بیٹھ کے نا خود سے کاؤنسلنگ کریں क्या चीजें मुझे दीन की पसंद हैं और क्या पसंद नहीं है, और जो नहीं पसंद है उसको लिखिए और उस पर गौर कीजिए कि इसकी नापसंदीदगी की वजह ये है, लेकिन इसमें मेरे लिए खैर क्या है। और अगर जरूरत हो तो लिख के दीजिए और फिर हम उस पर बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। आप देखेंगे हर हुक्म में खैर है। मसलन रमजान का रोजा, गर्मी, लंबा दिन, नहीं पसंद। आपको क्या पता कि ये रोजा आपके जिस्म को कितनी सेहत दे दे। तो लिहाजा हमेशा अल्लाह के हुक्मों को मानिए, तकदीर से लड़ा नहीं करते, उसको कबूल कर लेते हैं। जिसने ये कायनात दी उसने शरीयत दी, और उसकी शरीयत में कोई भी चीज बुरी नहीं है। फिर एक और सवाल, यसअलूनक अनिश शहरिल हराम क़िताल फी, लोग पूछते हैं माहे हराम में लड़ना कैसा है, कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर आहे खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है, और फितना खून रेजी से शदीद तर है, वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, हत्ता कि अगर इनका बस चले तो तुम्हारे दीन को तुमसे फेर ले जाए। और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और कुफर की हालत में जान देगा, इसके अमाल दुनिया और आखरत दोनों में जाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे, बखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया, वो रहमत इलाही के जायज उम्मीदवार हैं। अल्लाह इनकी लग्जिशों को माफ करने वाला और अपनी रहमत से इन्हें नवाजने वाला है। इस आयत को भी आप हाईलाइट कीजिए। आप देखिए चार चीज़ें हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू फिर वजाहदू फी सबीलिल्लाही उलाइका यरजूना रहमतुल्लाह वल्लाहु गफूरु रहीम। तीन अमल साथ साथ हैं, ईमान, उसके बाद हिजरत और उसके बाद जिहाद। ये इस्लाम की पीक है। सबसे पहले इंसान ईमान लाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पहचान होती है, अच्छा लगता है, नमाज पढ़ने को दिल करता है, उसके नाम पे कुछ खर्च करने को दिल करता है। फिर जिंदगी में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होती, तो बंदा उनसे हिजरत करने लगता है। हिजरत अल्लाह से मोहब्बत की दलील बन जाती है, बड़ी मुश्किल लगती है। अब आप कहते हैं हिजरत के साथ ही हिजरत मदीना, अच्छा जी यहाँ से हिजरत करके हम मक्का चले जाएं। देखिए ये तो बहुत बड़े फैसले हैं, छोटी छोटी हिजरतें पहले कीजिए। अल मुहाजिरु मन हाजरा मन अल्लाहु अन, मुहाजिर वो है जो हर उस चीज से हिजरत करे जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता। चलिए खुद से सवाल करते हैं, मुझे किस किस चीज से हिजरत करने की जरूरत है। अपनी कोई आदत लिखिए, है पर मुझे पता अल्लाह को पसंद नहीं। कोई शुगल लिखिए, कोई चॉइस देखिए। मिसाल है कि आपको खूब वक्त जाया करना अच्छा लगता है, 3 घंटे फिल्म देखते हैं आप कहते हैं क्या नसीहत आमोज फिल्म थी, 5-6 गाने भी उन्होंने आपको सुना दिए, अब दिल में खटपट है, म्यूजिक सुनती हूँ मजा बड़ा आता है, पर आज आप कहते हैं अल्लाह तेरे लिए अब इसको बदलती हूँ, उसकी जगह कोई जरा सी उससे हल्के दर्जे की चीज कर दूं। फिर होते होते एक दिन आएगा आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा उससे। बिलीव मी, छोटी छोटी हिजरतें बड़ी हिजरतों का रास्ता आसान करती हैं। और अगर हिजरत मुश्किल लगे तो एक बहुत बड़ी हिजरत को याद कर लें, वअन्नकुम इलैहि तुहशरून। मौत की सूरत में सब छूट जाएगा, सारी आदतें छूटेंगी, सारे कपड़े इधर रह जाएंगे, सारे घर इधर रह जाएंगे। हम बस सुबह सिर्फ इसलिए कोई रिस्क नहीं लेते, कहते नहीं इतना कुछ छोड़ दिया फिर क्या होगा। हमारी एक बहुत प्यारी साथी है तो वो बहुत कहना चाहिए कि एक्सट्रीम कल्चर से कुरान कल्चर पे आई, यानी कह लीजिए कि शो बिजनेस उनकी पहचान थी, मॉडलिंग उनका काम था। वो कहती हैं कि जब दिल में कुरान पढ़ने का ये ख्याल आया कि ये कपड़े जिसके अंदर जिस्म भी नहीं पूरा छुपता बल्कि और ही खूबसूरती दिखती है छोड़ दूं, लेकिन कुछ अरसा जो बीच में था वो क्या था, हाय ये सारे कपड़े छूट जाएंगे। मैंने कहा अपने छोड़ने क्यों है, इसको चेंज कर ले, बाजू नहीं है बाजू लगा ले, गला खुला है उसको जरा गहरा कर दें, ऑल्टरनेट कर दें, आपके यही जोड़े आपके काम आ जाएंगे। तो बस दफा याद रखें ये चीजें पांव पकड़े होती हैं, ये सब कुछ छोड़ दूंगी। इसी तरह एक सिस्टर तो कहती हाँ नहीं बस मैं ये करूंगी पर्दा, बस मेरे भाई की शादी हो ले जो पहनने पहन लो, मैं गाने छोड़ दूंगी जरा वो मेरे फुलां की बात हो जाए। कर, जहां दराज है मेरा इंतजार कर। तो जो अल्लाह के लिए थोड़ा सा छोड़ देता है, फिर उसके बाद जिहाद, जिहाद मेहनत स्ट्रगल, तकलीफ तो होती है, आदत पड़ी होती है, कितना मुश्किल है। मुझे इसके ऊपर एक रिवर्ट है, उनकी बात याद आ गई कि जब कोई नया शख्स इस्लाम पे आता है उसके लिए आपको पता है कितना मुश्किल है। तो किसी के किसे के मैं सुन रही थी उनकी स्टोरी, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे मुश्किल चीज़ इस्लाम कबूल करने के बाद जो लगी वो फजर के लिए उठना लगता था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कहते मैंने हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली, लेकिन फजर के लिए उठना मुझे इतना बोझल लगता था। और कैसे किया फिर आपको बताऊं? वो कहते हैं कि मिसाल है कि नमाज 5 बजे होती है, तो मैं क्या करता, अपने सरहाने एक तेज सा अलार्म लगाता 4 बजे का। अब 4 बजे वो जब अलार्म बोलता तो नींद में छट से हाथ लगाता, अलार्म बंद करके फिर सो जाता। अब कुछ तो जरा नींद खुल गई ना, उसके बाद एक और घड़ी पे 15 मिनट बाद का अलार्म लगा के अपने बेड से इतनी दूर रखता कि जहां के लिए मुझे बेड से उतरना पड़े, 4:15 बजे वो अलार्म बोल जाता। अब जब आंख तो पहले ही खुली हुई थी, लेकिन वो बस वही बात है कि सोने की कोशिश थी, जब वो अलार्म बोला गुस्सा आया, फौरन अपने बेड से उठा, थड़प से जाके उसको बंद किया, फिर आके लेट गया। कहते हैं फिर इसमें थोड़ी सी बेआरामी होती। फिर वो कहते हैं कि एक तीसरा अलार्म मैं लगाता और उसको मैं रखता बिल्कुल बाथरूम के डोर के पास, 15 मिनट बाद जब वो अलार्म बोलता, अब मैं बिस्तर से उठता इधर जाता, जब मैं बाथरूम तक पहुंच के अलार्म बंद करता तो फिर मेरे दिल में आता उठ तो गया ही, चलो वॉशरूम यूज़ कर लूँ, वॉशरूम यूज़ किया वज़ू भी कर लूँ, वज़ू करके नमाज पढ़ ली। ये है मन हाजरा अल्लज़ीना हाजर व जाहदु फ़ी सबीलिल्लाह। देखिए मुँह को लगी छुटते हुए टाइम तो लगता है, पर जो जितनी दूर से आएगा उसको उतनी कदर मिलेगी। एक शख्स शुरू से दीनदार माहौल में था, उसने ये कुछ देखा ही नहीं, उसको क्या पता कि इसका क्या मजा है। मजा ये कि आप गलत चीजों में पड़े हुए थे, आप हराम हलाल के फर्क के बगैर जी रहे थे, अब ये किताब आपको उस दलदल से निकाल रही है और तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रही है, चलना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, पहनना नहीं आ रहा, लेकिन आप कहते हैं अल्लाह मुझे कबूल कर ले। ऐसे लोगों को अल्लाह कहते हैं उलाए का यरजून रहमत अल्लाह। अब आप अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार हो। हम कुछ ना करके भी कहते हैं जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, क्योंकि आगे भी आ रहा है अल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह उसके लिए गफूर रहीम है जो उसकी मर्जी का बनना चाहता है। छोटी सी बात करके आगे चलती हूँ। आप देखिए कि नॉर्मल घरों में, मैं कोई बिगड़े हुए माहौल की बात नहीं करती, अमूमन देखिए कि लड़कियाँ शादी के बाद खुद को तब्दील करती हैं, नए घर के तकाजे फ़र्क होते, कितना भी कोई अच्छा हो फिर भी फ़र्क होता है। सगी खाला के घर भी रिश्ता हो जाता है ना, वहाँ भी चेंजेस होती हैं। ये नहीं कि माँ का घर अच्छा था खाला का बुरा, लेकिन एक चेंज होता ज़रूर है। शुरू का साल लग जाता है बंदे का हर चीज़ को एडजस्ट करते हुए, कर ली उसके बाद सारी ज़िंदगी का सुकून है। और अगर वहाँ जाके हर वक्त कंपेयर ही करते रह गए, ताने ही देते रह गए, और मियाँ को हर वक्त यही कहते रहे तेरे घर में आके चैन ना पाया, सुकून ना पाया, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो जब एक छोटे से घर को बसाने के लिए दुनिया में हम ये कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी अपसेटनेस नहीं ला सकते? लेकिन उससे पहले वही बात है, वानना को मिले ही दुख शरू, उसकी तरफ जाना है। अल्लाह ताला आपको मुझे उसका एहसास दे दे।